ओम शांति। आज हमारे बीच मुंबई से पधारी है राधा बेन, जिनका हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। छोटा सा परिचय, पूरे परिवार ज्ञान में चलते हैं और तीन बहनें हैं जो समर्पित हैं। दो बहनें मुंबई में सेवा करती हैं और एक बहन रसिया में सेवा करती हैं। आपको 1968 से आपने ज्ञान को प्राप्त किया है, 30 साल से आप समर्पित हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया है। 1984 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया है। अनेक स्थानों पर जाकर आपने सेवा की है। वर्तमान समय में आप मुंबई गोरेगांव सेवा केंद्र की संचालिका हैं। क्या कहें हम आपके लिए, संसार करता है जिनकी भक्ति, संसार करता है जिनकी भक्ति, तुम ही हो वो शिव की शक्ति, तुम ही हो वो शिव की शक्ति। दिखाते हैं शेर पे जिनकी सवारी, जो अस्त्र शस्त्र से है सिंगारी, हम सबके बीच उपस्थित है वही राधा बहन हमारी, वही राधा बहन हमारी। आज इस टॉपिक पर राधे दीदी क्लास कराएंगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ अर्थात रूहानी विकास, आत्मिक विकास के। तो निवेदन करती हूँ राधा बहन से, उनसे अभी हम सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज का जो विषय है रूहानी प्रगति, या कहें कि आत्मिक प्रगति, आत्मा का विकास, शायद जो आध्यात्मिकता से बाबा के ज्ञान से जो आत्मिक विकास होता है, मैं नहीं समझती कि कहीं और हो सकता है। जितना अभ्यास बढ़ता है उतना ग्रोथ होती है। जितने विघ्नों को, परिस्थितियों को, समस्याओं को, बातों को हम क्रॉस करते जाते हैं और धीरे धीरे चलते चलते जब इनको क्रॉस करना सहज हो जाता है, सॉल्यूशंस सहज आते हैं, तो विकास की निशानी है ये। आत्मा डिस्टर्बेंस से परे हो जाती है, ये विकास की निशानी है। बातें आई, चाहे शरीर की तरफ से आई, चाहे लोगों की तरफ से आई, चाहे अन्य कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आई, चाहे कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आई, अनेक प्रकार की समस्याएं, कभी पैसे की आर्थिक समस्याएं आती हैं, कभी राजनीतिक, कभी अन्य प्रकार की, लेकिन उन समस्याओं को हल करने के लिए बैठ नहीं जाते, लेकिन जैसे मक्खन से बाल, बाबा कहते हैं ना, निकलता जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, रास्ते खुलते जाते हैं। तो आध्यात्मिक प्रगति कहो या रूहानी प्रगति कहो, उस शब्द को अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो आत्मा जितना प्रगति करती है उतना बाह्य तौर पर समस्याओं से परे होती जाती, लेकिन अंदर और गहरे उतरती जाती है। आत्मा अंदर खुद से मिलती जाती है। खुद से मिलना क्या, मैं जो हूं, बाबा ने मुझ आत्मा का मुझे जो परिचय दिया है, हम अक्सर परिचय में कुछ बातें बताते हैं और उसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि आत्मा के ये 7 गुण हैं, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं, शुरुआत में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं योग का, तो हमें बताया जाता है कि आप ये मन ही मन सोचो और इसको विजुअलाइज करो कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। यूं कहें कि यूं सोचो, मैं ही शांति हूँ, आई एम पीस, मैं ही शांति हूँ। शांति और मैं प्रायवाची हैं, या सुख और मैं प्रायवाची हैं, एक ही हैं। अगर शांति कहो तो वो मैं हूँ, अगर कोई मेरा परिचय दे और शांति का परिचय दे तो एक ही बात है। ऐसे ही बाकी सभी गुण, जिसमें ज्ञान अगर हम कहें तो ज्ञान को हम समझ भी कह सकते हैं। तो ज्ञान, शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, पवित्र शक्ति, ये सब प्रेम, ये सब मेरे 7 गुण, ये मैं हूं। जब मैं मेरे से, जो ओरिजिनल मैं हूं, जब मैं उससे कनेक्ट हो गई और बार बार कनेक्ट होती रहती हूँ और सहज कनेक्ट होती हूँ और मैं वही दिखाई देती हूँ, मेरे से शांति, प्रेम, आनंद, सुख दिखाई देने लग जाए, तो मैं उस ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रही हूँ। ये मेरी ग्रोथ है, क्योंकि समयांतर में द्वापर युग के बाद आत्मा अपनी जो उसका मूल स्वरूप था उससे हटती गई। क्रोध ने स्थान ले लिया, अशांति ने स्थान ले लिया, अपवित्रता ने स्थान ले लिया, अशुद्धता ने स्थान ले लिया, कई प्रकार के विकारों ने स्थान ले लिया, और मुझे लगने लगा कि ये सब नेचुरल है, ऐसे ही तो सब चलता है, दुनिया ही ऐसे चलती है। लेकिन अब बाबा ने हमें कुछ और बताया। बाबा ने कहा, नहीं मीठे बच्चे, आप एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो ये मेरी ओरिजिनलिटी है, ये मेरा मूल स्वरूप है। और एक अभी मैं हूं जिसमें हो सकता है कुछ खामियां हैं, बहुत ज्यादा क्रोध नहीं है लेकिन थोड़ा है, या तो क्रोध नहीं है, इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन, जोश, या क्रोध है, थोड़ा सा आता है तुरंत ठीक भी हो जाता है लेकिन है, जिसके कारण मैं अपनी जो मैं जो खुद मैं हूं, मैं उससे मिल नहीं पाती हूं। आप देखिए, अक्सर बहुत सारे भाई बहन, बहुत पुराने पुराने भी होंगे, जो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि योग नहीं लगता। योग लगना माना हम क्या समझते हैं, शिव बाबा को याद करना, आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना। जब मैं आत्मा अपने से ही नहीं मिल पाती, उधर कैसे मिलूं? पहले मुझसे तो मिलूं, और मुझको इस लायक तो बनाऊं कि उससे मिल सकूं। उससे मिलना है, वो परम शक्ति, वो परम पवित्र शक्ति, वो परम आत्मा जो सर्व गुणों का भंडार है, जो सर्वशक्तिवान है, मुझे उनसे मिलना है। हम कहते हैं हमारी तो हॉटलाइन है, और दूसरी ओर हम कहते हैं हमारा तो योग ही लगता नहीं है। तो हॉटलाइन तब हो सकती है, क्लैरिटी चाहिए, कनेक्शन क्लियर कब होता है, कोई भी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं होती उस कनेक्शंस में, नॉर्मल जो अब मोबाइल के सैटेलाइट के थ्रू कनेक्शंस होते हैं, लेकिन कभी कभी नेटवर्क ملتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نیٹورک نہیں ہے آپ کے جو موبائل ہوتا نا اس میں وہ نیٹورک دکھا نہیں رہا ہوتا. کیوں پرابلم کیا ہو گئی؟ کہتے بادل ہے یا بہت زیادہ رش ہے اور اس کے کارن کنیکشنز نہیں ملتے. اگر ادھر آتما میں بہت سارے وچاروں کا رش ٹریفک یا کوئی بھی پرکار کے مایا کے بادل اگر ہیں تو آتما نہ خود سے مل سکتی, وہاں تو ملنے کی بات ہی نہیں ہے. یوگ میں بیٹھے ہیں, واتاورن اچھا لگ رہا ہے, اچھے سندر گیت بج رہے ہیں, سندر اڑانے والا میوزک بج رہا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. لیکن ایسا ہی اچھا واتاورن میں میرے سنکلپوں سے اور میری استھتی سے بنا سکوں وہ نہیں ہوتا. اور وہ انوبھوتی جو مجھے اس اپنی اس استھتی میں لے جائے, اس میں میں کھو جاؤں, اس لگن میں میں مگن ہو جاؤں, وہ نہیں ہوتی. اس لیے ابھی ادھر یوگ سے اٹھے اور ادھر ترنت ہم اتنی سہج آواز میں آ جاتے ہیں اور آواز سے پرے کی وہ استھتی اس کی انوبھوتی ہم کر نہیں پاتے ہیں, صرف سنتے ہیں کانوں سے. تو اگر یہی انوبھوتی نہیں تو جوالا مکھی انوبھوتی جس کی اتیادھک آوشیکتا ہے. تو اسپرچل گروتھ کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے میرا مجھ آتما کا وکاس ہو رہا ہے, اس گیان سے میں آگے جا رہی ہوں, اس کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ میں مجھ سے مل رہی ہوں, میں آتما مجھ سے ملتی ہوں, روز ملتی ہوں. اور کرتے کرتے اتنا سہج ہو گیا ہے ملنا مجھ آتما کا اپنے سے کہ جیسے کہ میں ملی ہی ہوئی ہوں. اور وہ چیز اب ویوہار میں آتی ہے, وہ ایمرج ہو رہی ہے. اب جب میں ویوہار کرتی ہوں تو وہ کلیوگی میں نہیں ہوں, اب میں وہ سنگم یوگی میں ہوں. کلیوگی میں نہیں ہوں, ہوں تو میں ہی, تن بھی یہی ہے, نام بھی وہی ہے, کام بھی وہی ہے جو پہلے کرتی تھی, لیکن اب ویوہار بدل گیا. جیسے کسی کی فزیکل گروتھ ہونی چاہیے, بچہ جنم لیتا ہے ماں کو چنتا ہوتی ہے, ماں کا دھیان ہوتا ہے کہ اس بچے کا چلنا, ابھی ایک سال ہو گیا تو ابھی تو پیروں پر کھڑا تو واکر سے تو چل ہی لینا چاہیے, اتنا سمے ہو گیا اب تو پاؤں پہ اکیلے چلنا چاہیے بنا انگلی پکڑے, ابھی اس کو بولنا چاہیے. اور اگر نہیں وہ چلتا ہے, نہیں وہ بولتا ہے, اس کا شریر بڑھتا نہیں ہے, ہائٹ ویٹ بڑھتا نہیں ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں نا. وہ فزیکل گروتھ ہے, شاریرک وکاس ہے. وہ اگر بچے کو کچھ سکھایا جائے, اسکول میں ڈالا جائے اور وہ ٹھیک سے پڑھ نہ سکے, یاد نہ رکھ سکے, تو بھی چنتا کا وشے ہوتا ہے. وہ مینٹل گروتھ کا بھی اس کا ہم سوچتے ہیں بھائی وہ بھی ہونا چاہیے, تبھی دھیرے دھیرے گرو ہوتے 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 ایک لیول تک ہم پہنچتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ایک اچھا بزنس مین یا ایک اچھا ڈاکٹر یا ایک اچھا انجینئر یا ایک اچھا ٹیچر, اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے والا, اوروں کو بھی اپنے ساتھ چلانے والا, یہ بن گیا ہے تو اب میں نشچنت ہوں, اب یہ سیٹلڈ ہے. شیو بابا ہمارے دونوں پیرنٹ کا کام کرتے ہیں, ماتا بھی ہے تو پتا بھی ہے. بابا ہمارے ٹیچر بھی ہیں, انیہ سمبندھی تو ہے ہی ہیں, لیکن یہ کچھ مکھیہ سمبندھ ہیں. اور اس لیے شیو بابا ہماری اسپرچل کیئر کرتے ہیں, ہمارا دھیان رکھتے ہیں, روح کا دھیان رکھتے ہیں. اس لیے ہم سے جب بھی شیو بابا باتیں کرتے ہیں تو روحانی باتیں کرتے ہیں. شیو بابا ہم سے جسمانی باتیں نہیں کرتے, दैहिक बातें नहीं करते, रोज बात करते हैं, रोज, और रोज खिलाते हैं, खुराक रोज देते हैं बाबा, और रोज हमसे बातें कर करके हमें आगे बढ़ा रहे हैं बाबा। मुरली क्या है? बाबा की बातें ही है ना। माँ बाप देखो, बच्चे से बात ना करें तो उस वो बच्चे की भी ग्रोथ इतनी नहीं होती है। बाबा कहते कभी मैं तुमको अपनी गोद में बिठाता हूँ, कभी तुम्हें मैं खिलाता हूँ, कभी तुमसे मैं अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, कभी तुमसे अपनी बातें, तुम अपनी बात बच्चे मुझे सुनाओ, मैं उसका तुम्हें हल दूंगा। तो ये सब बातें ग्रोथ में शामिल हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। कई बार हम समझ लेते हैं कि शायद ज्ञान में चलते चलते बहुत जल्दी कुछ सोल्स होती हैं जो औरों को ज्ञान सुनाने लग जाती हैं। प्रदर्शनी समझाई, चाहे मेला समझाया, चाहे कोर्स कराया, चाहे मुरली सुनाई, चाहे अन्य कोई विंग का प्रोग्राम है उसमें जुड़ गए, भाषण करने लगे, मैनेजमेंट के कोर्सेज कराने लगे, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है कि बुद्धि से हमने कुछ चीजों को समझ लिया, स्वीकार कर लिया और हम आगे बढ़ गए, और वो जरूरी है। अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, वो हमारी लाइफ से माइनस नहीं है, वो जरूरी है लाइफ में, पर वही लाइफ नहीं है। चाहे हम बहने, हमारी यही लाइफ नहीं है कि सुबह में मुरली सुनाई या योग कराया या किसी को कोर्स कराया या ज्ञान सुनाया या किसी को पालना कर दी, टोली खिला दी या किसी के क्वेश्चंस को हल कर दिया, यही लाइफ नहीं है। हमारी आध्यात्मिक लाइफ माना मुझ आत्मा का विकास, अर्थात मेरे जीवन से कुछ ऐसी बातें जो आत्मा की उन्नति में बाधक हैं वो निकल जाएं और कुछ ऐसी बातें आ जाएं जो आत्मा की उन्नति में सहायक हैं। बाबा कुछ शब्दों में एक बात को कहते हैं, नर ऐसी करनी करे सो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे सो श्री लक्ष्मी बने। बात आके कर्मों पे रुक जाती है कि ऐसे कर्म हो जो हम उन जैसा बन सके। वो कर्म तो यहां होने होंगे, वहां तो जाने के बाद कोई कर्मों को ठीक करने वाला नहीं है, यहां ही अपने कर्मों को ठीक करने की जरूरत है। और कर्मों को ठीक करने के लिए कोई आधार चाहिए, इसलिए बाबा आप देखिए हमारे इस संगम युग के प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं। रोज सेंटर पर सुबह मुरली क्लास, रोज। एक समय था केवल सुबह हुआ करता था, अभी तो शाम को भी, दोपहर को भी सुविधाएं, या तो टेलीफोन पर भी या तो पीएम टीवी भी, नई सुविधा है आने की, नहीं आ पाते हैं तो फिर ये अल्टरनेटिव्स भी हैं। भाव है कि ज्ञान बुद्धि में जाना चाहिए और उसका अभ्यास होना चाहिए। बाबा ने साधन बना के दिए हैं बहुत सारे, और उसके साथ साथ आप सब मुरली सुनने वाले हैं, आप सब रोज सेंटर पर जाने वाले हैं, नियम होते हैं ना, नियमों के आधार पर ही बाबा से मिलने आते हैं। लेकिन बाबा ने ये भी एक विधि रखी है स्पिरिचुअल केयर में कि साल में कम से कम एक बार इस बड़े घर में आओ और बड़े घर में बाबा के ही अंग संग रहकर बाबा की वो ईश्वरीय पालना का डायरेक्ट अनुभव करो। जब बाबा स्वयं आएंगे और स्वयं आकर सन्मुख अपने बच्चों से मिलेंगे और उन बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान से पालना देंगे, और ना केवल ईश्वरीय ज्ञान से पालना, यहाँ स्थूल पालना भी बाबा संपूर्ण रीति से देते हैं। इसलिए माताओं को कोई भोजन नहीं बनाना है भोजन, भाइयों को कोई ऑफिस नहीं जाना, कोई बिजनेस में नहीं जाना, सबसे निश्चिंत होके बाबा 6 दिन यहाँ बिठा देते हैं। कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, किसी को भेजना नहीं, कुछ टिफिन नहीं बनाना, कुछ नहीं, कोई कपड़ा नहीं धोना, कुछ नहीं करना, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। ये स्पिरिचुअल केयर का एक हिस्सा है। अब ये हमारे ऊपर है, मैं इसको कहूंगी कि ये भी एक प्रकार की भट्टी है। आप देखिए सुबह से लेकर आपकी दिनचर्या देखिए, सुबह से लेकर अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे गीत बजता है, उस गीत बजने से लेकर रात्रि 9:30 तक, 9:30 बजे वापस गीत बज के 10 बजे क्लास पूरा होके फिर आप अपने अपने कमरों में विश्राम के लिए जाते हैं। दिन भर कुछ ना कुछ ईश्वरीय ज्ञान की पालना विभिन्न रीति से हमारी चलती रहती है, चलती रहती है। अब मैं इसको कैसे लेती हूँ वो मेरे पर निर्भर करता है। अब इस ईश्वरीय ग्रोथ की बात जब हम करते हैं, जब हम आत्मिक ग्रोथ की बात करते हैं, उसका मापदंड क्या है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। गुण दुनिया में, जीवन में बहुत सारे हैं। 7 गुण आत्मा के बताए गए हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक गुण कहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरा हर कर्म मुझे उस गुण तक ले जाए। अगर मैंने किसी को सहयोग दिया तो उसमें मेरा स्वार्थ नहीं था, लेकिन सचमुच सहयोग देने की भावना थी, तो इधर शांति होती है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है, ठंडक महसूस होती है, मुझे भी और जिसको मैंने दिया उसको भी। और अगर मैंने कुछ स्वार्थवश दिया तो सुकून और शांति नहीं मिलती, लेकिन वो एक ऊपरी, जैसे एक वो मजा, देखा मैंने अपना काम निकाल लिया, मेरे को कोई इसको सहयोग वहयोग देना नहीं था, ये तो मैंने इससे अपना काम निकालना था इसलिए मैंने इसको दिया। लेकिन मैं क्या कह रही हूं, बाबा क्या कहते हैं कि जो मैं करती हूं उसके रिटर्न में यहां शांति आती है, इधर ठंडक होती है, उसके बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। वो मिला तो जैसे सब कुछ मिला, तब तो बाबा ने कहा पाना था सो पा लिया, परमात्मा को तो पाया था। लेकिन जो संकल्प बाबा को आया, साकार बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, दादा लेखराज को, वो जो मिला यहां, वो ऐसी अनुभूति हुई और मुख से निकला पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, अब कुछ नहीं चाहिए। आप बताइए आसान है? जिस तरह से ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ समेटा और ट्रस्ट बना दी और बहनों का नाम डाल दिया उस ट्रस्ट में, अपना नाम तक भी नहीं, आसान है? आसान नहीं, आप सोच के देखना कभी। जबकि बाबा के आगे कोई एग्जाम्पल नहीं था, फर्स्ट सोल जिसको बाबा ने चुना था। तो जब हम कोई भी कर्म करें उसका रिटर्न अगर मुझे यहां सचमुच शांति मिलती है, अच्छा लगता है, सुख मिलता है, आनंद होता है, तृप्ति हो जाती है, सुकून हो जाता है, समझो मेरा राइट कर्म था, वो कर्म मेरी ग्रोथ करेगा, मुझे आगे ले जाएगा, मुझे बढ़ाएगा, ये निश्चित है। तो 7 आध्यात्मिक गुण हैं, उसके बाद हम कहते हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज के बाद मॉरल वैल्यूज, नैतिक गुण, जैसे दया भाव। भाई कोई क्रॉस कर रहा है, क्रॉस नहीं कर सकता, वृद्ध है, हम उसकी उंगली पकड़ के क्रॉस करा देते, ऐसे रहम भाव, दया भाव, ऐसे कई नैतिक गुण हम बताते हैं। और उसके बाद जो गुण बताए गए हैं वो है ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय गुण। भाई ये तो मानवता है, हम ऐसा कहते हैं ना, इतना भी इनमें मानवता भी नहीं है, तो इतना तो होना चाहिए। चलो दैवीय गुण नहीं, मानवीय गुण तो होने चाहिए ना मनुष्य में, अगर हम मनुष्य हैं तो। कहते हैं ना ऐसा, तो कुछ मानवीय गुण होते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे पांच गुण ही हैं जो मैं समझती हूँ वो मापदंड है हमारी प्रगति का। अगर हम सचमुच दिल से भगवान के बने हैं, अगर हम सचमुच अपने से जुड़े हैं, अगर हम सचमुच आत्मिक उन्नति चाहते हैं, ये पांच गुण मेरे में, इन गुणों की पराकाष्ठा चाहिए। अगर ये पांचों गुणों की पराकाष्ठा है जो कहीं ना कहीं मुझे मेरे मूल गुणों से, आध्यात्मिक गुणों से जोड़ते हैं, तो मैं समझूं कि हाँ मैं किस लेवल तक पहुंच गई। उसमें पहला गुण मैं कहूंगी त्याग। किस चीज का त्याग? मैंपन का। सबसे पहले मैं देह, हम कहते हैं पदार्थ देह के, देह की दुनिया, देह के संबंधी, यहां तक कि ये देह, मैं और मेरापन, पोजेसिवनेस का त्याग। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये घर मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये कार मेरी, ये देह मेरी, ये कपड़ा मेरा, ये चीज मेरी, जैसे उसमें जो जुड़ जाते हैं ना, फंस जाते हैं। कभी कभी मैंने देखा है किसी किसी को, समझो कोई चीज, मैं ये नहीं कहती कि हम अपनी चीजें खोते रहें, ये भाव नहीं है, लेकिन समझो कभी कोई चीज फट गई या पुरानी हो गई या खो गई, तो कोई कोई का इतना अटैचमेंट होता है, दिन भर संकल्प उसी में ही जाएंगे, उसी में जाएंगे, उसी में जाएंगे, निकलेंगे ही नहीं बाहर वहां से, कोई काम में मन ही नहीं लगेगा, क्या हो गया आज, बड़ा मन कहाँ है, कहते नहीं सुबह से ना मेरा रुमाल खो गया है, मिलता ही नहीं है। तो बुद्धि वही है, चार को कह देंगे, आपने कहीं देखा चार बार उसी जगह पर चले जाएंगे जहां मिसप्लेस शायद हो गया था। टू मच जिसको कहते हैं, टू मच पदार्थों में बुद्धि, टू मच मैं में बुद्धि, मुझे मान मिलना चाहिए, मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए, मैंने ये काम किया है तो ये तो अनाउंसमेंट होनी चाहिए, फलाने का हुआ मेरा नहीं हुआ, तो ये त्याग वृत्ति ये बहुत जरूरी है। मैंपन का त्याग, अभिमान का त्याग, अहंकार का त्याग, पदार्थों से मोह का त्याग। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पदार्थ यूज ना करें, पदार्थ तो हम यूज करते ही हैं और करनी है, बाबा ने कोई मना भी नहीं की है, लेकिन उसमें जो मन बुद्धि रम गया है वो ना हो, या संबंधों में टू मच अटैचमेंट। कोई व्यक्ति चला गया, मान लीजिए कई बार होता है ना, अकाले मृत्यु का जमाना है, असमय आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया, बुद्धि निकलती नहीं है, इतनी बुद्धि उसमें ही है, उस दुख में है, इतना दुख लिया है आत्मा ने कि अब मैं खुद बीमार पड़ गई हूं उस व्यक्ति के जाने के कारण। संबंधों में जैसे बाबा कहते ना फंसे हुए हैं, ये डोरियां हैं, ये धागे हैं जिनसे मैं आत्मा जुड़ी हूं, वो मुझे वहां अंत में जाने नहीं देंगे, ये अंत में काम आएंगी ये बातें, ये मुझे वहां जाने नहीं देंगे। बाबा बुलाएगा, एक है ना हमारा, बाबा खींच रहा वतन की ओर, तो बाबा बुलाएगा और हमको ये रस्सियां नीचे खींच रही होंगी, क्या हालत होगी हमारी। इसलिए त्याग मैंपन का, मेरेपन का, जैसे होता है ना भाई, ये चीजें मेरी हैं, चलो ये तो मेरी है ना, मुझे मिली है ना, मेरा हिस्सा है, उनमें भी पॉजेसिवनेस नहीं है, कहां मेरी है, यूज करने के लिए मेरी है, ठीक है खत्म, सब यही छूट जाने वाला है, क्या जाना है साथ में, देह भी साथ में नहीं जानी है, जब देह नहीं जानी तो ये शॉल साथ में जानी है, तो इसके प्रति मैं मोह करूं, फंस ना जाऊं। हम इसको जरूर चेक करें कि कहीं भी संबंधों में, अपनी देह में, पदार्थों में, दुनिया में बातों में कहीं मेरी बुद्धि ना, कहीं बुद्धि ना, सब कुछ करते हुए कार्य पूरा हुआ मैं आत्मा न्यारी हूं भाई। ये अभ्यास की जरूरत है। दादी जानकी सुनाते हैं, एक बार दादी ने सुनाया था कि स्पेन में गए थे तो किसी ने कहा सुना है आप भगवान से बातें करती हो, तो दादी ने कहा कि आपको भी करनी है, अगर आप भी करना चाहते हो तो और बातें बंद कर दो, भगवान से आप भी बातें करेंगे फिर वो आपसे बातें करेगा, आप तो कर ही सकेंगे वो आपसे बातें करेगा। तो बातों में भी अटैचमेंट नहीं, इसलिए कहा कि मैं मेरे से जुड़ जाऊं, और वो जुड़ना हो नहीं पाता अगर ये त्याग नहीं है, अगर हम वही दुनिया के चक्कर में ज्ञान समझने के बाद भी उसी में लगे हुए हैं, तो यहां आने के बाद भी उसी में लगे हुए हैं, जुड़ नहीं पाते, त्याग कर नहीं पाते, और अंत घड़ी जब आएगी, चाहे शरीर की आए चाहे दुनिया की आए, तो सबसे पहले यही काम आएगा, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भव है, अशरीरीपन का अभ्यास अपने से पूछे, शरीर से परे की अनुभूति है, समझ है, ज्ञान है, अनुभूति। बाबा अभी कहे अशरीरी हो जाओ, हो जाएंगे अपने आप से, अपनी अपनी रिपोर्ट निकाले, मेडिकल रिपोर्ट निकालते हैं ना, अपनी रिपोर्ट अपने आप, स्पिरिचुअल रिपोर्ट निकाले, क्या रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट बुरी आती है तो डॉक्टर कहता है ये ठीक करो ये ठीक करो, आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा है ठीक करो। दूसरा है सच्चाई, मैं मेरे से सच्ची तो बाबा से सच्ची, अगर मैं मेरे से झूठी बाबा से भी सच्ची नहीं हो सकती, पूछो अपने आप, दूसरों से सच्चाई पीछे है, अपने से सच्चाई, मन खाए नहीं कहीं भी, गिल्ट फील ना हो, होता है ना कभी गिल्टी कॉन्शियस कहते हैं उसको, गिल्ट फील ना हो मुझे कि मैंने ये ठीक नहीं किया, कोई चीज मुझे हाइड ना करनी पड़े, छिपानी ना पड़े। इसलिए जब मनुष्य गलत करता है ना, बुरा करता है, तो क्या करता है, छिपके करता है, क्या करता है, सब दरवाजे बंद कर लेता है, सब तरफ पर्दे वर्दे लगा देगा, खिड़की को ना, कुछ कुछ बाहर किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कहते हैं दो व्यक्ति आपको सदा देखते रहते हैं, कौन से दो, एक आप खुद और दूसरा उधर ऊपर, बाबा को सदा दिखाई देता है और मुझे भी सदा, मैं तो मेरे साथ हुई ना, यहां से तो मैं छिप ही नहीं सकती। इसलिए अपने से सच्चे, कई बार बहुत से लोग ना ट्विस्ट करके बात को कहते हैं, बात को बाबा का जो युक्ति युक्त वाला शब्द है ना, उसको उल्टे ढंग से ले लिया है, बात को घुमा करके कहते हैं और चालाकी से कहते हैं कि ऐसा कह दूंगा, ऐसा कह, सोच लेते हैं मन में और वैसा बिहेव कर लेते हैं। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं ना, तो उनके चेहरे चेहरे पे आ जाता है, चेहरा बता देता है, जिसको कहते हैं ना एन आयोटा ऑफ, वो एक इतना सा भी अशुद्धता का, झूठ का, ठगी का दाग, धोखे का दाग, वो भी ना, इतने फेथफुल, इतनी ऑनेस्टी अपने से, इतनी सच्चाई, कोई प्रकार की अशुद्धता नहीं, कोई भी प्रकार की अशुद्धता, इतनी मैं आत्मा मेरे से सच्ची। प्यूरिटी का ये एक दूसरा फॉर्म है, हम यूं पवित्र रहते हैं पवित्र हैं तभी यहाँ बैठे हैं ना, इस सभा में तो बैठ ही नहीं सकता कोई और। हम ब्रह्मचर्य की पालना करते हैं, पवित्र हैं, हमें गर्व होता, हम इतने साल से बाबा से मिलते हैं क्योंकि हम पवित्र हैं। लेकिन ये पवित्रता जब व्यवहार में चीजों के साथ, व्यक्तियों के साथ जब सच्चाई वाली बात आती, वो कितनी, मैं मेरे से कितनी सच्ची, मैं बाबा से, जब मेरे से नहीं तो बाबा से भी नहीं ना, वो कितनी। तो ये दूसरा मापदंड है। समय आगे बढ़ता जा रहा है, मैं इसलिए शॉर्ट कर रही हूं। तीसरा है सादगी, सिंप्लिसिटी। बाबा का जब ज्ञान की और गुणों की पराकाष्ठा होने लगती है ना, तो स्वाभाविक सादगी आने लगती है। फिर तड़क भड़क, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स अलग बात है, लेकिन कोई भी चीज को अगर आप यूज भी करेंगे ना, उसमें कोई भी प्रकार का आपका ना अटैचमेंट दिखाई देगा, ना कोई प्रकार का, अन्य प्रकार का कोई लोभ या आपका उसमें कोई विकार दिखाई देगा। आज बाबा के घर में आप देखेंगे, हमारा जो बाबा का ये घर, चाहे सेंटर्स, दे आर ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। हर लेटेस्ट साधन यहाँ यूज होता है। लेकिन आज हमारी दादियां वो भी ये सब चीजें यूज करती हैं, जो टेक्नोलॉजी आज आ रही, लेकिन किसके लिए? सेवा के लिए। सेवा की खत्म, दूसरा कोई उससे और कार्य नहीं होता। तो सादगी, सिंप्लिसिटी, मेरा उठना बैठना चलना बात करना, उसमें भी वो सादगी झलकेगी। और सादगी को जो मैंने पहले कहा ना, उस तरह से अगर ले तो उसमें कोई चालाकी नहीं है मेरे बात करने में, वो सादगी, वो सिंप्लिसिटी है। उसका मतलब बुद्धू बना नहीं है, बाबा के बच्चे बुद्धू नहीं हो सकते, बुद्धू बना नहीं है, समझ सब आता है। क्या आप क्या समझते हैं? नहीं समझता होगा, ज्यादा समझता है। जब आप और तरफ से न्यारे हो जाते हैं, ये सेंस ज्यादा काम करती है। लेकिन इतनी शक्ति है कि उसको समा करके सामने कहते नहीं है, वो भी उनके कल्याण के लिए। समझ में तो आता। इसलिए अपने जीवन में सिंप्लिसिटी को जरूर अपनाएं। सादगी बहुत जरूरी है। सादगी, इसलिए सादगी के साथ उच्च विचार जुड़ा हुआ है। सादा जीवन, उच्च विचार। इसलिए बाबा की भाषा में बाबा सदा ऐसा कहा करते थे, बच्चे ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ऐसा भी नहीं किसी को देख, कोई हमको देखे तो उसको तरस आए कि बेचारा, काहे को बेचारा, तीन बाप के बच्चे, लौकिक अलौकिक पारलौकिक, बेचारे थोड़ी है, रॉयल। लेकिन ऐसे भी ना हो कि किसी की दृष्टि बार बार इसलिए जाए कि वाह क्या पहना है, वाह क्या पहना है, किसी की हमारी चीजों पर, वस्तुओं पर दृष्टि, ऐसा भी ना हो, ना बहुत ऊंचा ना बहुत ऊंचा, मध्यम, बाबा कहते मीडियम। सेंटर बनाओ तो भी ऐसा, घर बनाओ तो भी ऐसा, पहनावा रखो तो भी ऐसा, चीजें यूज करो तो भी ऐसी। क्योंकि जब तक सादगी नहीं, तब तक ये उच्च विचार जो भगवान दे रहे हैं, ये बहुत ऊंचे थॉट्स हैं, ये कॉमन मुरली नहीं है। इस मुरली को समझना एक दिन, एक साल, दस साल का काम नहीं है। इसकी गहराई में जाते जाओ, हर दिन नया लगता है, हर दिन नई लगती है, हर दिन। किसी को लगता है रोज तो बाबा मुरली में मन मना भव मध्याजी भव, यही तो कहते हैं। तो किसी को लगता है नहीं, आज बाबा क्या कहने वाले, आज बाबा क्या कहने वाले। कितने साल हो गए ज्ञान सुन के? कि जी 50 साल हो गए। पर आज बाबा क्या कहने वाले, वो सुनने को आतुर हैं, उसमें वो नयापन ढूंढ लेते हैं। इन उच्च विचारों को लेकर अपने जीवन को उच्च बनाना है, लेकिन जब तक सादगी नहीं तब तक इन उच्च विचारों की ऊंचाई तक हम पहुंच नहीं पाते। हमें इन उच्च विचारों की ऊंचाई तक पहुंचना है। चौथा है न्यारापन, अवे, मतलब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ कानों में पड़ता है, कुछ अच्छा पड़ता है, कुछ बुरा भी पड़ता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता, हम क्या माने। तो अगर न्यारा रहना है तो केवल बाबा से सुनने की आदत डाल लें, इधर उधर से सुनना ही नहीं है। इधर उधर से जब सुन आवाजें आती हैं तो कान ऑटोमेटिकली बंद रहते हैं। आपको पता है कुछ लोगों को ना ऐसा अभ्यास होता है, मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं, अब रास्ते पे जाते जाते कहीं नहीं कोई एरिया में कोई केमिकल्स की फैक्ट्रीज होती हैं, तो वहां स्मेल सी आती है, वो स्मेल नहीं टॉलरेट कर पाते, या कहीं और प्रकार का कोई कचरा पड़ा है तो उसकी बदबू आती है, तो उनको अभ्यास होता है, चल रहे हैं नॉर्मल। कहते मैंने ना अपनी जो मेरी सूंघने की शक्ति थी ना उसको क्लोज कर दिया था, मैंने उस स्मेल को लिया ही नहीं। अब कोई नाक तो बंद नहीं की थी, लेकिन वो सेंसेस को कंट्रोल इतना कर लेते हैं, और ये हो सकता है, अनुभव से कहती हूं। ऐसे ही इस प्रकार की जब बातें आती है ना, तो कान को तो ढक्कन नहीं है, आंखों को तो फिर भी है, कान को तो नहीं है ना, बंद तो नहीं कर सकते ना, लेकिन इतनी इन सेंसेस की को कंट्रोल करने की पावर हो हमारे अंदर कि ऐसी बातें इधर आती ही नहीं है, पड़ती ही नहीं है ना अंदर, जो एक से सुनूं फिर दूसरे से निकालने की मेहनत करूं, आती ही नहीं है, न्यारे हैं। अब वो समय आ गया है न्यारा होने का, अब नहीं होंगे तो बाकी फिर कब। ये इसलिए मैं मापदंड की भाषा में बात कह रही हूं, इसलिए हम सबको ये मापने की जरूरत है कि मेरे अंदर ये बातें कितनी आई। और पांचवी बात, संतुष्टता, संतोष। इसके बारे में बहुत बातें सुनी है हमने, आया कितना संतोष। हम इच्छा मात्र अविद्या की बात बहुत बार सुनते हैं, लेकिन कितनी इच्छाएं शांत हो गई। इस पर हमको काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये होमवर्क है। इन पांचों बातों को लेकर के हम चेक करें अपने को, जब क्लासेस से फ्री होकर के, भोजन से फ्री होकर के, दिन का समय होता है ना, बहुत तो थकान यहाँ तो होती नहीं है, वैसे भी ठंडक के दिन चल रहे हैं तो दिन में बहुत नींद तो नहीं आती है, आधा घंटा नैप लिया तो बस है, बाकी का जो दिन का समय है ना उस समय अपने ऐसे चार्ट्स बना ले, पता चले यहाँ दर्पण है, भगवान की कर्म भूमि वरदान भूमि है, ये दर्पण है हमारे लिए। अगर बैठ जाएंगे ना साइलेंस में, मैं क्लियर दिखाई दूंगी मैं क्या हूं, तो देखें कितनी इच्छाएं समाप्त हो गई, और अगर होती है तो क्या होती है, क्या आता है। इसलिए एक बार कुछ टीचर्स बहनों के साथ कहीं जाना हुआ था, तो मैं बैठी थी, तो मैं उनको कहती थी, मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब इस तन से प्राण निकले, जब ये शरीर छूटे, तो फिर तो पीछे सब संभालने वाला कोई दूसरा ही व्यक्ति होगा ना, हमारी चीजों को समेटेगा, हमारी कबर्ड को समेटेगा, बैग को समेटेगा, बहुत सब समेटना तो पड़ता ही है ना, ये तो सिस्टम नियम ही है। तो ऐसा ना हो उसको ये लगे कि इसने बहुत चीजें रखी हुई थी अपने पास, मुझे कितना चाहिए, मुझे मेरे लिए कितना चाहिए, क्यों मैं रखूं ज्यादा, अपना जो मेरा शेल्फ है, मेरा खाना है, मेरे को जितना चाहिए उसमें उतना ही हो बस, उसके अलावा मेरा नहीं। भी घर में तो बहुत कुछ होता है, पर मेरा नहीं, मेरे पास वही हो, मैं मेरे पास क्यों रखूं। अपने यज्ञ में सिस्टम है, हर 6 मास के बाद जो यहाँ रहने वाले होते हैं उनको वस्त्र दिए जाते हैं या अन्य जो भी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं। हमारे एक दादा विश्व रत्न थे, अभी तो वो अव्यक्त हो गए हैं, तो हमेशा जब भी उनको दादियां देते थे ना, तो अगर उनको जरूरत नहीं है ना तो वो लेते नहीं थे, कहते थे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, अभी मेरे पास पड़ा है, क्यों ले लो, जरूरत पड़ेगी कभी भी, पड़ेगी तब मैं मांग लूंगा, अभी नहीं चाहिए, नहीं लेते थे। और आप उनकी तस्वीर भी अगर कहीं देख लो तो जरूर देखना, वो अपना जो यज्ञ के आदि रत्नों का चित्र बना हुआ है ना, एक बुक भी है उसमें उनका चित्र है, फ्रंट पेज पे है, उन आदि रत्नों में एक चित्र उनका भी है, आप उनके चेहरे से देखेंगे योग उस चित्र से भी झलकता है, वाइब्रेशंस आते हैं, संतोष था, कितना रखे अपने पास। इसलिए ये जरूर हम नोट करें कितना संतोष है मुझे, इसलिए तब तो कहा संतोषी नर सदा सुखी। देखो समेटने की भी झंझट नहीं होती, कितना कम होता है ना, समेटने की भी झंझट नहीं होती, ये तो सारा दिन समेटते ही रहो। तो जो रिक्वायरमेंट है वो रखें, और जो नहीं है मिल जाएगा। और वैसे भी कहते हैं जब आप प्रकाश की तरफ जाते हो तो परछाई आपके पीछे आती है, आप कभी जाके देखना, कभी नाइट में वॉकिंग करते हैं तो स्ट्रीट लाइट, अगर आप लाइट की तरफ जा रहे हैं तो पीछे पीछे परछाई आएगी, अगर लाइट से दूर जा रहे हैं तो परछाई आगे हो जाती है। तो ये साधन क्या है, जितना हम अपनी लाइट, मैं आत्मा भी तक ज्योति हूं ना, उसकी उस अंतर तक जाएंगे, अपने अंतर तक। वो कहते हैं हे आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी, जितना उस अंतर तक जाएंगे तो ये साधन तो पीछे पीछे रहेंगे, और जितना साधनों के पीछे जाएंगे लाइट से दूर हो जाएंगे। तो माप लें अपने को, आए हैं स्पिरिचुअल केयर के लिए, और उसकी केयर में, भगवान की केयर में, शिव बाबा की केयर में है, तो ऐसा तो बन करके निकले कि देखने वाला कहे वाह क्या व्यक्ति है, क्या क्या सैंपल पीस है, उसकी वाह वाह तो कम से कम हो, ईश्वरीय तो लगे। अभी भी अगर हम दैहिक ही लगते हैं, ईश्वरीय नहीं लगते, कहीं कमी है। और इन सब बातों का आधार अगर ये जीवन में लानी है, क्योंकि ये एक दिन के पुरुषार्थ से नहीं आती या कहने से नहीं आती, हाँ अब मैं ना सच्ची रहूंगी, ऐसे नहीं आती, काम करना पड़ता है उसके पीछे, अपने पीछे काम करना होता है। उसके लिए बाबा ने बहुत ही सुंदर और सहज साधन दिया है, जिसके लिए सदा बाबा मुरली में ये बात रियलाइज कराते हैं, रिमाइंड कराते हैं कि बच्चे मुरली कभी मिस मत करो, मुरली सदा सुनो, कुछ भी हो जाए, कितनी भी डिफिकल्टी हो, कुछ भी हो, सेंटर पर जाकर, सेवा केंद्र पर जाकर, या यहाँ भी आए हैं, कई बार मैं देखती हूँ मुरली के समय भाई बहन कुछ इधर उधर होते हैं, तो बाबा का एक भी अक्षर इस यहाँ इस कान से मिस ना हो, एक भी अक्षर। कहते हैं बाबा ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, कहते हैं ना मुरली में, अगर एक रत्न मिस हो गया तो कितना नुकसान, लाखों का नुकसान, दुनिया में लाखों का नुकसान हो जाए तो मनुष्य चिंता में ही पड़ जाए, लाखों का क्या, लाख का भी हो जाए ना, 50,000 का भी हो जाए तो भी चिंता में पड़ जाता है। बाबा कहते एक एक रत्न लाखों रुपयों का, तो होना तो ये चाहिए कि एक भी रत्न मिस ना हो, लेकिन कई बार क्योंकि ग्रस्त में है, कार्य व्यवहार में है, कई प्रकार के कामों में है, तो कई बार होता है कि आज तो टाइम ही नहीं, अब क्या करें, तो 15 मिनट भी अगर मिले, आधा घंटा भी मिले, लेकिन जो सेवा केंद्र पर जाकर आप मुरली सुनेंगे उसका जो आनंद है कहीं नहीं मिलेगा, वो ना मोबाइल पर मिलेगा ना पीएम टीवी पर मिले, कहीं नहीं मिलेगा। ये तो उनके लिए है जो बेचारे वृद्ध हो गए हैं, आ नहीं सकते, लाचार हैं, उनके लिए घर बैठे बाबा है। मुझे याद है हम छोटे छोटे थे, कभी कभी सेंटर दूर होता था, तब तो सेंटर बहुत कम होते थे, तो दादी आई कोई तो जाना होता था दूर क्लास में, तो दादियां हम दादियों को कहते थे दादी घर बहुत दूर है तो दूर हो जा। दादी कहती थी जितने कदम आप सेंटर पर आने के लिए ज्यादा चलेंगे ना उतना कदम कदम में पदम, क्योंकि आप सेंटर पर जा रहे हो, याद किसकी रहेगी, किसकी रहेगी, बाबा की रहेगी। तो इसलिए कोई भी प्रकार की बात, कोई भी प्रकार का बहाना कह लो या कोई कुछ भी कह लो, उसको छोड़ के उसमें से कुछ रास्ते निकालो और युक्ति से बाबा के घर पहुंच ही जाओ। बाबा का हर सेंटर 11 बजे तक खुला रहता है, सुबह 6 बजे तो खुल ही जाता है हर सेंटर। क्लास में जा सको नथिंग लाइक दैट, नहीं जा सको 11 बजे तक सेंटर, उसमें भी नहीं शाम की क्लास, दोपहर की क्लास, आगे पीछे। बाकी सेंटर 8 बजे तक तो खुले ही खुले हैं, कहीं कहीं तो 9 बजे तक भी खुले हैं, शाम को 4 बजे खुल जाते हैं। क्यों नहीं हम टाइम निकाल सके? और सुनने की जहां तक बात आती है, जब हम मुरली सुनते हैं तो 3 प्रकार का सुनना होता है। जब सुनते हैं ना तो 3 प्रकार से सुनते हैं। एक सुनना होता है, इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश शब्द यूज कर रही हूँ, सुनना माना हियरिंग, कानों से सुनते हैं, उसको सुनना कहते हैं, हियरिंग, आई हियर, मैं सुनती हूँ, सुन रही हूँ, सुनाई दे रहा है। ये सुनाई नहीं देता तो कान की मशीन लगाते हैं सुनने की, हियरिंग एड बोलते हैं उसको, यहाँ लगा देते हैं, सुनाई दे रहा है। दूसरा सुनना है लिसनिंग, उसको भी सुनना ही कहते हैं हिंदी में, ध्यान से सुनना। जब ध्यान से सुनते हैं तो उस बात को समझते हैं, तो फेसेस से समझ में आता है ये ध्यान से सुन रहे हैं। और तीसरा सुनना है जिसको हम कहते हैं सुन करके करना। तो जब सुन करके कोई करता है ना, मान लीजिए बच्चे हैं और बच्चों को पेरेंट्स या माँ या पिताजी कुछ कहते हैं, बेटा ये काम करना, और बेटा कर लेता है और हर बार करता है, तो माँ क्या कहती है, ये वाला मेरा बच्चा है ना, ये हमेशा मेरी सुनता है, सुनता तो दूसरा भी है, ये वाला हमेशा सुनता है, क्या सुनता है, ये करता है, ये वाला है ना ये मेरी सुनता ही नहीं, सुनता तो है, कान तो उसको भी है और उसको पता है माँ क्या कह रही है, पर माँ कहती है नहीं सुनता मेरी। तो शिव बाबा जो हमारी माँ भी है ना, जब हम करते नहीं है ना तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरी सुनते नहीं है, जब ये नहीं सुनते तो फिर मैं भी नहीं सुनता, मैं उसकी सुनता हूँ जो मेरी सुनता है। इसलिए कहा ना कि फिर जब हम और बातें बंद कर देते हैं तो फिर बाबा सुनता ही नहीं, अपनी सुनाता भी है। इसलिए वो गीत है ना, बड़ा सुंदर गीत है, कुछ अपनी सुनाने को जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुम्हारी भी सुनूं और अपनी भी सुनाऊं। पर वो सुनेगा कब, जब हम उसकी सुने, अर्थात हम करें, हम करेंगे ही नहीं तो वो हमारी क्यों सुनेगा, नहीं सुनता। फिर हम कहें बाबा उसकी तो बात कर देता, उसका तो काम कर देता है, मेरा तो करता ही नहीं है, मेरा तो एक भी नहीं किया आज तक। और ये बाबा से सुनना सुनाना रू रिहान करना, ये योग नहीं तो क्या है? हम तो समझते हैं कि दिन भर ही योग है, एवरी मोमेंट योग है। और जब ऐसे आत्मा इस तरह इस सच्चाई से चलते चलते बाबा से बातें करने लगती है, उसके जवाब आने लगते हैं, बाबा अपनी बातें सुनाने लगते हैं, तो उस आत्मा का आनंद का पारावार नहीं, रोम 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 में बाबा बाबा बाबा, रोम रोम बाबा 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 बोलता। तो अपनी इस खुराक का ध्यान रखें। ये खुराक कब माया आके चूहे की तरह कुतर के ले जाएगी पता नहीं चलेगा। चूहा क्या करता है, चुपचाप कुतरता है ना, तो माया भी चूहे के रूप में कुतर लेती है खुराक को, हमारी खा जाती है। कहीं भोजन होता है ना, खुशबू आती है, अगर चूहे हो ना, चूहे पहुंच जाते हैं वहां, सारा खोल खाल के खा पी के भाग जाते हैं चुपचाप, पता भी नहीं चलता, बिना आवाज के आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। इसलिए इसका भी हमें ध्यान रखना है कि कहीं कोई ऐसा चूहा, माया रूपी चूहा, इसको कुतर के तो नहीं जा रहा, उसकी भी परख इसलिए चाहिए। इसलिए एक और बात, आखिरी बात कह करके मैं पूरा करूंगी कि अक्सर हम लोग जब भोजन खरीदते हैं खाने का, जो दाल चावल आटा जो भी खरीदती हैं माताएं, तो उसका ध्यान रखती हैं कि अच्छा वाला लेना है, अच्छी वाली सब्जी, सड़ी हुई ना हो, कीड़ा लगा हुआ ना हो। जब बनाते हैं उस समय भी ध्यान रखते हैं, जब उसको डिब्बों में भरते हैं उससे पहले तो भी ध्यान रखते हैं, और फिर जब हम खाते हैं टेबल पर, हमको थोड़ी पता होता है कि इसमें कोई कंकड़ पत्थर आएगा, लेकिन हम इतने कॉन्शियस होते हैं इधर, खाते खाते अगर कोई ऐसा पत्थर आ गया तो हम तुरंत उठ करके उसको बेसिन में फेंक देते, हम उसको खा नहीं लेते कि कोई बात नहीं, पत्थर ही तो है, आजकल तो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन करा लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कोई नहीं सोचता। वैसे ही मेरे पास पैसे बहुत पड़े हैं, क्या करूंगा उसका, सोचता है कोई ऐसा नहीं। हम इतने अवेयर हैं उसके कि मुख में जाने के बाद भी अगर कोई ऐसी चीज आ गई जो लगती है ठीक नहीं है अंदर जाने के लिए, उसे हम निकाल देते हैं। लेकिन हमारे मन को जो खुराक मिल रही है, उस खुराक को खाते खाते कई बार बीच में ऐसे ऐसे संकल्प भी आ जाते हैं जो मन में जाने लायक नहीं होते हैं, लेकिन हम उन संकल्पों को कभी रोकते नहीं है, उनको भी जाने देते हैं, वेलकम। और इसलिए अक्सर मुरली सुनने के बाद एक आध बात शुरू शुरू में किसी को याद रही तो रही, नहीं तो लगभग भूल जाती है सारी, कारण और बातें। इसलिए दादी जी आज सुबह भी हम टीचर्स के साथ बैठे थे तब भी सुना रहे थे, और अक्सर सुनाते हैं दादी कि जब वाणी चलती थी बाबा की, तो मम्मा कभी मान लो सामने बैठ गई तो बाबा उनको सामने नहीं बैठने देते थे, बाबा उनको बाजू में संदल पर बिठाते थे। हिस्ट्री हॉल देखा होगा आपने, वहां दो संदलियां पड़ी रहती हैं हमेशा, तो बाबा इधर बिठाते थे और मम्मा ऐसे बैठ के मुरली नहीं, जैसे बाबा तो यूं फेस करके सुना रहे हैं, तो मम्मा अपने फेस को यूं करके मुरली सुनती थी कंटिन्यूअस फुल एक घंटा बिना मूवमेंट के, इतनी एकाग्रता। जब तक फिजिकल एकाग्रता नहीं तब तक मानसिक एकाग्रता भी नहीं, दोनों एक दूसरे से वैसा वर्षा है, तन की है तो मन की है तो तन की। इसलिए अपनी मुरली सुनने की विधि में थोड़ा सा, हम अक्सर बड़े लूज होकर बैठे हुए होते हैं, इसलिए जब मुरली सुने ना तो कमर को सीधा करके बैठे, जब भी क्लास में बैठे ना तो कमर को सीधा करे, आपको कहीं दर्द है कमर में तो पीछे लोअर बैक का सपोर्ट ले, अपर बैक को सपोर्ट ना दे। अगर आप अपर बैक को सपोर्ट देंगे, मैं आपको देके दिखाती हूँ आपका पोज कैसा लगता है, आप यूं हो जाते हैं और धीरे धीरे खिसक जाते हैं थोड़ा सा नीचे, और वो थोड़ा सा निद्रा वाला पोज हो जाता है एकदम ना ऐसी, जिसके लिए डॉक्टर्स भी मना करते हैं, नॉर्मली भी आप ऐसे मत बैठो। अगर आप ऐसे बैठेंगे तो ज्यादा देर बैठ सकेंगे और ज्यादा एकाग्र कर सकेंगे, अगर आप एकदम यूं बैठ जाएंगे तो आप एकाग्र नहीं कर पाएंगे, उसका भी ध्यान दें। और इसलिए बाबा जो ये स्पिरिचुअल केयर कर रहे हैं, इस केयर पर हम अपनी केयर करें कि वेदर क्या मैं इस केयर को, जो भगवान एज अ सर्जन एज अ डॉक्टर बनकर मेरी केयर कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, क्या उस केयर को मैं एक्सेप्ट स्वीकार कर रही हूँ? डॉक्टर ने तो कह दिया ये गोली खाओ, पर मैं ही नहीं खा रही। और अगर मैं गोली ना खाऊं समय पर और मैं परहेज ना करूं, जो नहीं करना वो नहीं ही करना, और जो करना है वो करना ही है। मुरली सुननी है, सुननी ही है। व्यर्थ नहीं बोलना, नहीं करना, और बातें नहीं सोचनी, नहीं ही सोचनी है। डॉक्टर ने कह दिया भी आपको ये चीज नहीं खानी, नहीं खानी, और ये तो जरूर खानी है भी, रोज एप्पल तो खाना ही है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन आपको दूसरी फॉर्म में शुगर नहीं खानी है, पर मुझे तो वही अच्छी लगती है, पर नहीं खानी। मुझे तो उन्हीं बातों में इंटरेस्ट है जो दुनिया करती है, पर नहीं करनी ना, क्योंकि नुकसान कारक है। और वही बातें करनी है जो बाबा करते हैं, तो वही फायदेमंद है। मेरा कहने का ये भाव नहीं है कि सारा दिन कोई हम ज्ञान बोलते रहे, आई डोंट मीन दैट। ज्ञान युक्त व्यवहार, समझ युक्त व्यवहार। व्यवहार भले लौकिक है, लेकिन टपके उससे ज्ञान, टपके उससे समझ, टपके उससे ईश्वरीयता, दिव्यता, वो तब हम समझें कि सचमुच हम इस बाबा के घर में आए, क्षेत्र में आए, तो हमें अंदर संतोष है कि यस आई एम ग्रोइंग। ओम शांति।